الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان سے ڈسکشن اور گفتگو رہے گی، ہم آپ کی کالز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ ایسا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک دکھ بن کے انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، جسے آپ یوں کہیں کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جو ایک دکھ ہے، جو ایک تکلیف ہے، وہ ان کے فائنینشیل کرائسس کی بنا پر ہوتی ہے۔ بہت محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن جسے یوں بولیں کہ ایک مالی اعتبار سے ایک اچھا ان کا سسٹم بن پائے، وہ نہیں بن پاتا۔ مختلف کاروبار کرتے ہیں، اس میں نقصان ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، گھاٹا ہوتا ہے، پھر بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ ہمت نہ ہارے، وہ ہمت کرتا ہے آگے بڑھتا ہے، پھر قرض میں دب جاتا ہے، کاروبار میں خسارہ ہو جاتا ہے، دینے کو کچھ ہوتا نہیں ہے، ادھار لے کر کاروبار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو تکلیفیں یا دکھ جو انسان کی زندگی میں ایڈ ہو جاتے ہیں، ان کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے، کس طرح سے نکلا جائے، کیا فرمائیں گے آپ؟
اچھا سوال کیا آپ نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ آئے دن کرائسس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں،
جی ہاں جی،
اور انہوں نے اصل میں ان کی ایک وجہ، ہر ایک کی جدا جدا وجہ ہو سکتی ہیں، تو میں بعضوں کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا ہی کمانا ہے، اور اتنے ہی کمانے کے لیے انہوں نے وہ سارے ہاتھ پھر یہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں
جی۔
اچھا ہر ایک کی نصیب میں اسی طرح کی آمدنی جتنا وہ سوچتا ہے، اگر یہی سب ہوتا ہو تو آپ بھی سوچیں گے، میں بھی سوچوں گا، میری اتنی آمدنی ہو تو میری اتنی آمدنی ہو جائے۔ تو قرآن کریم میں اس کو بڑے واضح طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر کیا، کسی کو غریب، یعنی کسی کا رزق کشادہ ہے، کسی کا رزق تنگ ہے،
جی بالکل۔
اور اگر سب کو برابر ہو تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو امیری، غریبی، کمی، زیادتی، یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔
واہ۔
وہ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کوئی بہت کم محنت کر کے بھی مالدار بن جاتا ہے، کوئی بہت محنت کر کے بھی جو ہے نا اس کو جو ٹائٹل ملتا ہے نا وہ ملتا ہے مزدور۔ اللہ کتنی محنت کرتا ہے،
ایسی بات،
ایک آدمی کم محنت کرتا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں سیٹھ، اور ایک بہت محنت کرتا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں یہ مزدور ہے، لیبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ آدمی کی جو آمدنی ہے اس کے مطابق اگر اس نے اپنے اخراجات کو قابو کنٹرول کیا ہوا ہے تو شاید اس کے لیے پریشانی کم ہوگی۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کا بس ذہن بنا ہوا ہے کہ میں نے اتنے ہی کمانے ہیں۔ اچھا ان کے اندر، اپنی ذات کے اندر کوئی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، کیپیبلٹی نہیں ہوتی، ان کے اپنے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، اور خود ان کے اپنے مزاج اور نیچر کے بھی بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں، اور وہ تھوڑی پر بس کرتے نہیں ہیں۔ اس کو ہمارے عام پس کی لینگویج کہتے ہیں، اس کو ہلکی چلتی نہیں ہے، اس کو چاہیے ہوتی ہے تھوڑی بھاری بھرکم۔ اس کے لیے بیچارہ یہاں ہاتھ مارتا ہے، وہاں ہاتھ مارتا ہے، اس سے قرضہ لیتا ہے، اس سے پارٹنرشپ کرتا ہے، اسے یہ کرتا ہے، اسے وہ کرتا ہے، اور یہ دونوں ہاتھوں سے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کام تھا یہ چکنی مچھلی کی طرح اس کے ہاتھ سے پھسل گیا، اور وہ مائنس میں ہی چلا جاتا ہے،
جی ہاں جی،
وہ یوں اٹھتا ہے۔ اور پھر اچھا ایسوں کا بعدوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک گیم ہوتی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہ لوڈو کے پیچھے گیم ہوتی تھی،
سانپ والی
گیم ہوتی تھی، وہ 99 پر اس کا منہ بنا ہوتا تھا،
اور आता भी नीचे 6 पे था।
ओ नहीं, 0 पर वो उस मुंह से सीधा नीचे आ जाता था। खैर खेलना नहीं चाहिए, मैं एक माजे की बात बयान कर रहा हूँ। तो फिर ऐसा कैसा होता, फिर आए दिन एक नए नए कर्जों में, फिर ये कर्जे उतारते रहते हैं,
हाँ जी,
फिर बनते हैं, फिर कर्जे उतारते हैं, फिर बनते हैं। घर में परेशानी, आसपास परेशानी, मिजाज की परेशानी, ऐसों को मेरा मशवरा है कि ठंडे दिल के साथ सोचकर अपना एक बना ले कि भाई 20,000, 15,000, 25,000 कम में ज्यादा में लोग घर चला रहे हैं, वो जहन बनाया, लगता है मेरे लिए है ही ऐसा, वो इतनी खुशी की जिंदगी गुजारेगा।
सुभान अल्लाह।
यानी पैसे के पीछे भागकर, पैसा ना आकर, कर्जों में जाकर जिस परेशानी के साथ वो अपनी जिंदगी के दिन गुजारता है, और बजाय कोई सूरत नहीं बनती कि इसके साथ कोई मजीद कोई ऐसी उमदगी पेश आ जाए, तो उसे अपना गिराफ, अपना माइंड और अपना लिविंग स्टैंडर्ड को एक मेंटेन करना चाहिए, एक यूं लाना चाहिए कि भाई इतना तो मैं कमा सकता हूं। यानी यूं समझिए सलमान भाई कि हर आदमी के दीवार फलांगने का एक कद होता है, एक सलाहियत होती है।
सही।
अब कोई शख्स एक ही कोशिश करता है कि मैं बस डंडा लेकर, कुछ भी लेकर, मैं वो ऊंची दीवार से फलांग कर मैं निकलूंगा, तो ये बारहा गिरता है, ये बारहा गिरता है। कोई छोटी सी मुंडेर बनाकर भी तो फला, ये भी दीवार ही कहलाती है, फलांग नहीं है ना तुमको, अपना कद, अपना मिजाज देखकर। इसमें ये होता है कि नहीं, आदमी को तरक्की करने की ख्वाहिश रखनी चाहिए, तो भाई सिर्फ पैसा ही रहेगा तरक्की करने के लिए। असल कामयाबी तो खैर आखरत की कामयाबी है
जी,
लेकिन दुनियावी ताल्लुक से अगर मैं बात करूं तो प्यारे इस्लामी भाइयों, खुशी और कर्जे के से निकल कर जो जिंदगी है ना, यानी अमीले सुन्नत की जिंदगी मुझे याद आ रही है। आज की तारीख में अमीर सुन्नत खुद फरमाते हैं, मेरे पर 1 रुपए का कर्जा नहीं है, यानी किसी को कोई देना नहीं है। अल्लाह ताला का करम है, खाना मिल जाता है, खाना आ जाता है, रहते हैं, एक नॉर्मल जिंदगी है, एक अच्छी जिंदगी है, यानी पैसे की कोई परेशानी, पैसे का कोई टेंशन नहीं है। और ऐसे एक नहीं है, ऐसे आपको मतलब ये इनकी तो खैर कैटेगरी चेंज है, वो तो एक दर्जे पर है, अल्लाह इनको सलामत रखे। अगर मैं आम हम जैसे भी मुसलमानों की, मोमिनीन की बात करूं, तो मोमिनों में भी, मुसलमानों में भी एक दर्जे होते हैं ना, ये एक दर्जे पर होते हैं अल्लाह के नेक बंदे। तो हम जैसे भी कई लोग होते हैं, मेरे तो आसपास में समझे कि बस हजारों लोग हैं यार, और लोग रह रहे होते हैं, थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज, यानी वो जिंदगी का थोड़ी बहुत तंगी जो आपके घर की चार दीवारी की है वो एफोर्डेबल है, लेकिन जब बाहर से प्रेशर आता है ना, वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इसलिए मेरी दरख्वास्त यही है, इस सवाल के जिमन में अर्ज कर रहा हूं कि रिफ्रेश करें, अपनी सोचों को रीशेड्यूल करें, रीरूट करें, अपने रूट को रीस्टोर करें, और एक नए अंदाज से अपनी जिंदगी का आगाज करें। अब जो हुआ सो हुआ, आगे की जो मेरी जिंदगी है, मेरे फैमिली, बीवी, बच्चों के साथ, मेरे वालिदैन के साथ मैं खुशी के साथ गुजारूं, पैसे का टेंशन लेकर इतना जी जी कर बंदा बीमार हो जाता है, कोई किसी काम का नहीं रहता। तो यूं थोड़ा नॉर्मेलिटी की तरफ आने की कोशिश करें और अपने आप को इबादत की तरफ लेके जाएं। यहाँ एक सवाल शायद पैदा होगा, कोई हल तो बताएं, औराद व वज़ाइफ हैं, या गनियों का विर्द करें, या गनियों, गईन से है, सिरातु जिनान में लिखा है कि जो या गनियों के विर्द करता है, या गनियों कहता है, अल्लाह ताला उसे मालदार कर देता है,
सुभान अल्लाह,
गनी कर देता है। जब घर में दाखिल हो, तो घर में दाखिल होते ही ये तो तय कर लेंगे, जब भी घर में दाखिल होना है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के दाखिल होना है, शैतान बाहर रह जाता है। ठीक है, हदीस पाक में आता है, जैसे ही घर में दाखिल हो, घर में दाखिल होते ही घर वालों को सलाम करें और सूरह इखलास पढ़े। अगर घर में कोई नहीं है तो सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज कर दे, अस्सलाम वालेका अय्युह नबीय्यो। ठीक है, तो ये कर ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके हालात बेहतर होते उसे नजर आएंगे। मैं बताता रहता हूँ, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोएं, आपके दस्तरखान में रिस्क में अल्लाह बरकत देगा। मजीद बताता हूँ, इशराक चाश की नमाज पढ़े, अल्लाह ताला आप अपने रिस्क के दरवाजे खोलेगा। तुलुए फजर से लेकर, फजर का वक्त शुरू होने से लेकर فجر کا وقت ختم ہونے کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے، اس دوران اپنے رب کے حضور بالخصوص حاضری دے کر دعا کر کے نماز وغیرہ جو پڑھنی ہو پڑھ کر آپ دعا کریں، یہ اسباب کریں، انشاءاللہ عزوجل اللہ کریم آپ پر رزق کشادہ کرے گا. ایک اور بات، مالدار بننا ہے، پیسے والا بننا ہے اور اللہ کی رحمت سے اچھا رزق چاہیے، تو اس کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اللہ تعالیٰ مالدار کر دیتا ہے. ماں باپ کی دعائیں لیں، اللہ مالدار کر دیتا ہے. آپ رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. یہ برکتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ مالوں کے ڈھیر کا محض نام نہیں ہے. آپ کی چیزیں پوری ہو جائیں گی، اللہ آپ کو باکفایت رزق دے گا، اللہ کریم اپنی رحمت سے آپ کو غنی کر دے گا، اور سب سے بہتر غنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کا غنی کر دے. یہ جو دل کا غنی ہونا ہے نا، دل کا مالدار ہونا، یہ سب سے بہترین ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل سے مال کی محبت چلی جاتی ہے. تو یہ سکون کے فارمولے اور رزق میں کشادگی کے فارمولے اور مطلب کہ رزق میں برکت کے فارمولے اور اس طرح کی میں نے چیزیں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہیں. آپ اس کو اختیار تو کریں، اللہ اور پھر قناعت، یعنی اپنے وہ جو اللہ نے جو مقدر کیا ہے نا، بس اس سے لڑے نہیں. جو تقدیر سے ٹکراتا ہے نا، پاش پاش ہو جاتا ہے.
اللہ
جو مقدر میں اس کو بس راضی بالرضا، اپنی رب کی رضا پر راضی رہنے کی طبیعت پیدا کریں، تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی عمدگی کے ساتھ آپ کی زندگی گزرے گی. اگر اجازت دے تو ایک مثال یاد آ رہی ہے، بیان کر دوں. بالکل، میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. سلمان بھائی آپ سے سوال جواب، میں پہلے بھی عرض کیا لیکن ویورز بھی بدلتے رہتے ہیں. آپ کے سورج پیچھے ہو تو سایہ کہاں ہوگا؟
آگے.
اب آپ چلتے رہیں تو کیا آپ سایہ کو پکڑ سکتے ہیں؟
کبھی نہیں پکڑ سکتے، جتنا آگے جائیں گے سایہ بھی آگے جاتا
جائے گا، آگے جاتا رہے گا. یہ سورج ہے نا، یہ آخرت سمجھے آپ، سایہ کو آپ دنیا سمجھے. تو یہ سورج آگے آ گیا، سایہ کہاں گیا؟
پیچھے.
اب آپ چلتے رہے، سایہ کس کے پیچھے؟
بندے کے پیچھے پیچھے
پیچھے پیچھے. اگر آپ آخرت کو پیچھے رکھتے ہیں تو دنیا سائے کی طرح آگے رہے گی. آپ دنیا کے پیچھے چلتے جائیے،
ہاتھ نہیں آئے گی،
دنیا نے آنا نہیں، ہاتھ تو ہاتھ پاؤں میں بھی نہیں آئے گی،
اللہ اکبر،
بھاگتی رہے گی. اچھا بھاگیں گے تو یہ بھی بھاگتی ہے،
اللہ اکبر.
ایسا نہیں کہ بھاگا، اچھا آپ کہ میں گیر پکڑ لوں تب بھی آگے نکل جائے گی. ٹھیک ہے، اب آپ آخرت کو اپنے آگے رکھیں تو دنیا کہاں چلی گئی؟
پیچھے.
اب آپ آخرت کی طرف دوڑے، دنیا آپ کے پیچھے دوڑے گی.
سبحان اللہ، کیا پیاری مثال سے سمجھایا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا، ایک بڑی کمیونٹی ہے ہماری، اسٹوڈنٹ کمیونٹی، اور دونوں طرح کے ہیں اسٹوڈینٹس الحمدللہ، ریلیجیس جو ہے وہ نالج ایجوکیشن حاصل کرنے والے، مذہبی اپنے پڑھنے والے بھی ہیں، جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے والے بھی ہیں، اور یوں ہی اکیڈیمک ایجوکیشن والے اسٹوڈینٹس کی بھی کمی نہیں ہے، بھرمار ہے. یہ سوال میرا یہ ہے کہ ابھی جو سینیریو بنا ہوا ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں، اسٹوڈینٹس گھروں پر ہیں، ٹھیک ہے، اپنے مختلف مشاغل میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اسٹوڈینٹس جیسے اپنی روٹین، جیسے پڑھنے پڑھانے کی اس کو چھوڑ کر جو ایک اس میں لگے ہوئے ہیں، تو جو انہوں نے پیچھے پڑھا ہوا ہے ان کے سال میں تو بھول بھال جائیں گے. کیا کہیں گے آپ، کیا کریں گے، اسٹوڈینٹس کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟
اسٹوڈینٹ کو اپنی پڑھائی کے بارے میں جو شرن ان کے لیے پڑھنا جائز ہے
جی،
اسی کے تعلق سے میں بات کروں گا
جی،
کہ جو اسٹوڈینٹ اس طرح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یقیناً انہیں اپنے آگے اور پیچھے ہر جگہ کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور اگر ابھی پیچھے سے اچھا ہی پڑھ کر اب تک آئے تو پیچھے کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آدھ نظر گھمانے سے بھی کام ہو جاتا ہے.
ٹھیک،
اور آگے ظاہر بات ہے محنت کرنی پڑتی ہے.
صحیح،
تو اصل میں ایک ٹائم پیریڈ باندھ لیں گے نا کہ یہ میرا جیسے وہ اکیڈمک ٹائم تھا نا ان کا
جی،
उसी एकेडमिक टाइम को ही अपना समझे और वो जितना पढ़ते थे उसके हिसाब से अगर अपनी पढ़ाई को ये बाकी रखेंगे, टाइमिंग के साथ कंप्रोमाइज ना करें और उसी तरह अपनी पढ़ाई को जारी रखें, जैसे कि हमारे जामतुल मदीना के तलबा कराम है, तो अगर ये अल्लाह करे कि हमारे ये सारे खुल जाएं, वल्लाह आलम ये आसार मुझे नहीं इतनी इंफॉर्मेशन, खास तौर पर सुनते रहते हैं जून जुलाई वगैरह वगैरह, तो अगर ये जल्द खुल जाते हैं तो मदीना मदीना, नहीं खुलते तो जाहिर है कि इसके ताल्लुक से अपने जो टाइमिंग है उसको सामने रखकर ही आपको पढ़ाई अपनी करनी पड़ेगी,
ठीक है,
क्योंकि ये वक्त जब गुजर जाएगा और जब आप ज्वाइन करेंगे तो फिर आगे के एग्जामिनेशन का शायद टाइम आगे ना बढ़े तो फिर कवर करना बड़ा
मुश्किल हो जाएगा।
इसको यूं समझिए कि एक रिदम बनता है, एक आप जब हाईवे पे जाते हैं तो एक सर्टन जो फिक्स एक स्पीड है
जी।
अगर उसी पर चलते हैं ना तो आप टाइम पर गेट पर पहुंच जाएंगे,
सही,
और अगर आप पीछे से स्लो चले किसी भी वजह से, रुक गए, तफरियां करने लग गए, आराम करने लग गए, खाने पीने लग गए, अब आपको पहुंचना था जितनी देर में उतनी देर में तो आप पहुंचेंगे नहीं, अब पहुंचने के लिए उतनी देर में आप क्या करेंगे, गाड़ी तेज चलाएंगे, तेज चलाने के दो नुकसान, हादसा और चालान,
पेट्रोल की कंजप्शन ज्यादा हो जाती है,
तो ये नुकसान है ना, तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि अपनी जिंदगी के तमाम मामलों को एवरेज के साथ लेकर चले, एतिदाल के साथ लेकर चले, कहीं ये ना देखे यार ये गैप आ गया ये आ गया, कोई गैप भी इतने खास आते नहीं है, आगे जाकर वो चीजें बराबर ही हो जाती हैं।
सही।
तो जिंदगी की रूटीन को अगर ये लेकर चलेंगे और अपने टाइमिंग को वो एडजस्ट करके चलेंगे,
पढ़ते रहे,
तो मुताला अपना जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि बेहतर सूरत बन जाए
माशाल्लाह। ऐसे मैं एक और चीज भी जो है वो सोच रहा हूँ कि इंसान कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपनी डायरेक्शन तय कर लेते हैं फिर उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं, कुछ वो होते हैं जिनके इरादे जिनकी सोचें मुतजलजल होती हैं, कभी क्या करेंगे कभी क्या करेंगे कभी क्या करेंगे कभी क्या करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर एकेडमिक एजुकेशन की ही आप मिसाल ले लें कि एक तालिबे इल्म का ज़हन स्टूडेंट का ज़हन बना के मुझे ये कोर्स करना है सीए, जैसे लेट्स सपोज सीए करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है, अब वो बढ़ता जा रहा है, अब वो मुश्किल हो गया आगे जाके, अब बोलेगा यार सीए तो मुश्किल है चलो फला इस तरफ आए बीबीए कर लेते हैं, अब उधर चला गया, अब वो भी समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें, अब कोई डिप्लोमा जो है वो कर लेते हैं, डिप्लोमा नया शुरू किया वो भी नहीं बना, अब क्या करें, अब जो है ना वो कुछ तो करना पड़ेगा, चलो अब ये कर लेते हैं, तो इस तरह के जिन स्टूडेंट्स के मुतजलजल इरादे होते हैं कि उनकी कोई डायमेंशन वाजे नहीं होती, जरा सी अपनी
लड़खड़ा जाते हैं,
यूं ही हमारे जिस तरह जामियात और मदारिस में पढ़ने वाले 8 साल के जो है कोर्स में दाखिला लिया, फिर से मैं नहीं यार मैं 6 साल वाला कर लूं, अब 6 साल वाले में आए, अब वो लगा कि ये मुश्किल है, फिर दोबारा उधर 8 साल वाले में चला जाता हूँ, तो जो दो किश्तियों के सवार बंदा बना हुआ होता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हम अपनी सोच को अपने फोकस को किस तरीके से एक डायरेक्शन में एक समत में लाकर आगे बढ़ सकते हैं?
ऐसा आदमी असल में ऐसे ये लोग वो होते हैं जो एक तो बहुत ज्यादा मेहनती नहीं होते,
सही,
ये मेहनत से जी चुड़ाते हैं,
ठीक,
इनको हर चीज आसानी के साथ चाहिए, ये मतलब कि इनको बोलो तरबूज काट के खाओ तो शायद ये तरबूज काट के नहीं खाएंगे, ये अंगूर खा लेंगे, अरे आप तरबूज कौन काटेगा यार, अंगूर ये काटना ही नहीं है, यू लिया फा है, इनको केला खाने में भी बेचारों को तकलीफ होती होगी कि छिलका कौन उतारेगा यार,
अल्लाह,
ठीक है, तो ये बाज़ औक़ात ये इस तरह के लोग होते हैं जो थोड़ा सा भी इनके ऊपर मेहनत का प्रेशर आता है ना
जी
तो ये घबरा जाते हैं,
ऐसी बात,
ऐसे लोग कभी भी किसी एक मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, कोई एक शोबे में एक्सपर्टीज इनकी बनती नहीं है, और जब ये अपना एक एज गुजार चुके होते फिर कहते हैं हमको वो मकाम क्यों नहीं मिला जो दूसरों को मिला था, भाई तुमने वो मेहनत ही नहीं की, तुमने वो काम ही नहीं किया, तुमने वो लगन ही नहीं दिखाई कि जिसकी वजह से ये होता, बाग में जब शहद की मक्खी दाखिल होती है ना तो उसके सामने कई फूल होते हैं, अगर वो हर फूल पर थोड़ी थोड़ी देर बैठे ना तो कभी शहद नहीं देगी, उससे बाग में आकर किसी एक फूल का इंतखाब करना पड़ता है और उस एक फूल पर बैठकर उसको अपना वक्त देना पड़ता है, उसका रस चूसना पड़ता है, फिर जाकर अपने छत्ते में खाली करना पड़ता है, یہ بار بار کے پھول بدلنے والی مکھی جو ہے نا یہ کبھی شہد نہیں نکال سکتی. تو یہ ٹاپکس چینج کرنے والے, سبجیکٹس چینج کرنے والے کبھی کسی ایک جگہ پر پہنچ نہیں پاتے. تو بڑی سوچ سمجھ کر اور معلوم کر لیں بھائی کتنے گھنٹے کا ہوگا, کیا ہوگا, آگے کیا ہے, پیچھے کیا ہے. پھر ایک حادثاتی طور پر بندہ جب چھوڑ دے, گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا, کوئی خدا نہ خاصا بڑا واقعہ ہو گیا, الگ چیزیں ہوتی ہیں. مگر بیسیکلی بندہ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرے, سمجھدار لوگوں کے ساتھ مشورہ کرے, اپنی کیپیبلٹی پر, اپنی قابلیت پر, اپنی صلاحیت کا جائزہ لے. خالی خالی شیخ چلی کا خواب نہ دیکھے کہ جناب میں بھی یوں کر سکتا, میں بھی یوں کر سکتا. کچھ نہیں کر سکتا یار. بعضوں کا بالکل حوصلے ہی نہیں ہوتے, ہمت ہی نہیں ہوتی. بعض ہوتے ان کو اٹھنے پر قدرت نہیں ہوتی, بعض اٹھتے تو سونے کا ان کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. تو اپنی زندگی کو جو ایک روٹین بنی لا سکتا, وہ بڑی بڑی باتیں کر کے کیوں خالی خالی اپنا دوسروں کا بہت برباد
آیا کر رہے. ٹھیک ہے جی. گھر میں افراد ہوتے ہیں تو ان میں, یا خاندان میں ہوتے ہیں تو ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو مختلف موضوعات پر, ٹاپکس پر بات کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ بحث, بعض وقت بحث بھی کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی موضوع چھیڑ لیں گے. جیسے عید آ رہی ہے تو کوئی موضوع جو ہے وہ چھیڑ لیں گے, اور آگے پیچھے ہے مطلب, یعنی کوئی نہ کوئی اس طرح کا موضوع وغیرہ یہ بنا کر بحث کرتے رہتے ہیں. تو یہ اس طرح کی ابحاث کرنا دینی معاملات کے اوپر گھر میں بیٹھ کر, یا کسی کو بتا رہے ہیں, ایک بچہ جو ہے اگر وہ اچھے رستے پر جا بھی رہا ہے تو اس کو بھئی قرآن میں یوں نہیں ہے, یوں آیا ہے, اس طرح کر کے جو لوگ بحث کرتے ہیں, اس کو آپ کیا کہیں گے؟
علم کی کمی ہے. ایک راوی کہتے ہیں کہ میں 120 انصار صحابہ سے ملا, اور میں نے ہر ایک کو دیکھا کہ جب ان سے کوئی بات پوچھی جاتی تو فرماتے کہ دوسروں سے پوچھ لو,
اللہ
نہ بتاتے. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جن باتوں میں, یعنی وہ اپنے دور کے اہل ان لوگوں سے بھی شاید بات کر رہے ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے, کہ جن باتوں میں تم بول دیتے ہو, اگر فاروق اعظم کے بارگاہ میں یہ اگر یہ مسائل آتے تو وہ بدری صحابہ کو جمع کر لیتے.
اللہ اکبر.
یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ کہنا ہے نا میں نہیں جانتا, یہ خود آدھا علم ہے.
سبحان اللہ.
تو یہ علم کی کمی ہے جو آدمی بے علم باتوں میں پڑ جاتا ہے.
جی.
تو اس طرح کرنا نہیں چاہیے, یہ بہت بڑی جرات ہے. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہم رب تعالیٰ پر ہی جھوٹ باندھ دیں, کوئی حدیث پر غلط بیانی کر دیں. کہ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی بزرگوں کی طبیعت تھی کہ جب یہ کوئی حدیث سناتے تو اس پر کتنا غور کرتے کہ آقا نے یوں فرمایا, یوں ہی فرمایا, نہیں نہیں بالکل یوں ہی فرمایا ہے. ارے اتنا وہ غور کیا کرتے تھے. حدیث ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حدیث میں یہ ہے, جبکہ ہم نے نہ پڑھا ہے, نہ صحیح طور پر سنا ہے, نہ ہمارا حافظہ مضبوط ہے. ہمیں فرض نماز کے بعد عشاء کا فرض کا سلام پھیر کر اب کسی نمازی ایسے ہی چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, پوچھنے کا نہیں کہہ رہا, پوچھ لینا ورنہ بھی وہ سنا دے گا. مطلب ایک مثال دے رہا ہوں, خود سے پوچھے فرض نماز کے بعد کہ امام صاحب نے پہلی دوسری رکعت میں کون سی سورتیں پڑھی تھی. ہم نے پہلی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ یاد ہوگی, سورہ فاتحہ پڑھی تو ہوگی یار امام صاحب نے, اب اس کے علاوہ کون سی سورت پڑھی تھی یہ یاد نہیں ہے, تو پڑھا ہوگا نا بھائی. تو ہم یوں کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ نماز میں ہم نے کیا پڑھا. ہم کو ہماری سورتیں یاد نہیں ہوتی, پہلی پہلی رکعت میں جو پڑھی دوسری رکعت میں یہی یاد ہوتا, پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی, ایسا تو نہیں کہ الٹا پڑھ لوں میں, اتنا ہمیں یاد نہیں ہوتا. پھر ہم گھر میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے تو حدیث میں یہ. بھائی کہاں آپ نے قرآن میں پڑھا ہے, کہاں آپ نے حدیث میں پڑھا ہے, کیوں مطلب کہ آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے آزمائش پیدا کر رہے ہیں. اس لیے اہل علم لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں, کوئی علمی بات ہو تو اہل علم لوگوں سے پوچھ لو. ویسے بھی جس چیز کی معلومات نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لینا چاہیے. فَسَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تو پوچھو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے.
ماشاءاللہ. جی کال شامل کرتے ہیں.
आज की टॉपिक के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि हिम्मत तो इंसान को करनी चाहिए, लेकिन हमारे इर्द गिर्द माहौल में जो लोग होते हैं, जैसे हमारे असातिज़ा हैं, हमारे घर वाले होते हैं, इसी तरह दोस्त अहबाब हमारे होते हैं, तो ये लोग भी बाज़ औक़ात इस चीज़ में रुकावट बनते हैं हमारी हिम्मत में। अब बाज़ औक़ात हमसे कोई चीज़ नहीं हो रही तो ये लोग भी हमें बजाएंगे हमारी हिम्मत बढ़ाने के, हमें लान तान करेंगे और कहेंगे कि तुम्हारे से नहीं होता, तुम तो हो ही डफर हो, तुमसे नहीं होगा तो तुम ये ना करो। तो अगर माहौल ही इंसान का ऐसा हो सारा, तो फिर इंसान इसमें किस तरह उनको भी कुछ रहनुमाई फरमाए और अपने आप को भी हिम्मत में रखे, ये किस तरह डबल डबल काम कैसे इंसान का।
असल में दो चीजें होती हैं, एक तो वाकई वो लोग होते हैं जो हिम्मत तोड़ देते हैं, और बाज उस्ताद वो होते हैं जो हिम्मत तोड़ते नहीं है, आपको लॉस से बचा रहे होते हैं। उन्होंने आपको पढ़ाया होता है, उनको पता होता है कि आप क्या कर सकते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने जो बुखारी शरीफ लिखी ना, इनकी डायरेक्शन इनके उस्ताद ने तय की थी। वो कुछ और मौजू की तरफ जा रहे थे, इनके उस्ताद साहब ने फरमाया था कि मोहम्मद बिन इस्माइल इनका नाम था, कि आप हदीसें पर काम करें। तो उन्होंने अपने उस्ताद की बात मानी तो वो इमाम बुखारी बन गए। तो बाज़ औक़ात उस्ताद जानता है, बाज़ औक़ात बाप जानता है, यानी कि बाप जानता है कि यार ये उसके सामने उसका बेटा 18-20 साल का हो गया है, उसको पता है कि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, वो नहीं कर सकेगा। उसकी तालीमी, उसकी कल्बी, उसकी जहनी, उसकी इस्तिकामत की कई मिसालें बाप के सामने होती हैं। तो हर जगह पर डीमोटिवेशन नहीं होती, प्रॉपर डायरेक्शन होती है।
वाह।
और उसको हम कहते हैं यार आप हमें मौका तो दो, ठीक है फिर आपकी मर्जी आप कर लो, फिर वो यही कहेंगे ना, फिर आपकी मर्जी आप यही कर लो। तो मेरी बरों को ये जरूर दरखास्त है कि महज मना करने के बजाय, महज इनकार करने के बजाय और डिनाई करने के बजाय कुछ एविडेंस से, कुछ दलाइल से बात करें कि देखो आपने फ्यूचर माजी में ये किया, आपके लिए ये प्रॉब्लम्स आए। अगर आप करोगे तो आपको, मुझे लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है और आप नुकसान उठा सकते हैं। तो वो बातें फिर हमें रियलाइज करनी चाहिए। अगर कोई आपको मुझे मेरी कमजोरी खामी बताए तो इसमें अगर है वाकई, तो यार नहीं आपको मुझे डीमोटिवेट कर हिम्मत बढ़ाएं, भाई कहाँ से हिम्मत बढ़ाएं भाई, मतलब तो नहीं है। एक आदमी काला है उसको कैसे बोले कि नहीं यार आप गोरे तो लगते तो हो ना यार, इधर से गोरा लगेगा भाई, काला तो काला है गोरा तो गोरा है। अब वो छोटे कद का होगा बोले नहीं यार आपका कद है आपको नहीं समझ आती यार आपका, भाई वो नहीं है। तो यू मतलब कि जो रियलिटी है उसको मैं कबूल करूँ, आप कबूल करें क्या मुझ में ये कमजोरी है, मुझ में ये खराबी है, या मैं मतलब मैं मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं है। नहीं होती, कईयों को आप बात करके तो मुझमें ये सलाहियत नहीं है, कईयों को मैं हम अपने तजर्बे की बात आपको करते हैं, कईयों को टीम वर्क में काम करने की सलाहियत नहीं होती यार आप हमें किसी उसमें लेते नहीं। भाई आपके साथ ना लोग चल सकते हैं ना आप लोगों के साथ चल सकते हो, नहीं होती सलाहियत लोगों के साथ चलने की। बोले नहीं यार आप मौका दो, भाई अब मौका देना है तो आप अलग से कोई टास्क ले लो, कोई काम कर लो। हर खिलाड़ी 11 की टीम में खेलने के काबिल नहीं होता, कुछ सिंगल खेलने वाला भी होता है, खिलाड़ी तो वो भी होता है ना। हर 11 के 11 खिलाड़ी में हर कोई कैप्टन बनने की सलाहियत नहीं होती। मेरे को भी कह रहा भाई तुम्हें कैप्टन बनना नहीं आता या तुम कैप्टन नहीं बन सकते, आप मौका तो दें। और भाई तो अभी तक तो 10 साल तो देखा ना, सही खिलाड़ी नहीं बन सके कैप्टन क्या बनोगे। तो बाज लोगों में बाज सलाहियतें होती हैं, बाज लोगों में बाज सलाहियतें नहीं होती। किसी को बैठे बिठाए एडमिनिस्ट्रेटर बना दो, निगरान बना दो, तो गोया के बंदर के हाथ में उसरा दे दिया, अब वो यूं अपना ही मुंह वो पूरे निजाम को बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसको वो लगता है मेरा डंडा आ गया। उसको एडमिन बनना ही नहीं आता, उसको सुपरवाइजर बनना ही नहीं आता। वो बोले मुझे भी 10 साल 15 साल हो गए इदारे के अंदर, मुझे भी मौका दिया जाए। भाई आपके अंदर इस काम की सलाहियत नहीं है, बास वर्कर बन सकते हैं लीडर नहीं बन सकते। और जो लीडर होता है वो बाद अगर वर्कर नहीं बन पाता तो उसकी लीडरशिप भी खराब हो जाती है। अच्छा लीडर वो होता है जो वक्त पर वर्कर के साथ खड़ा हो, और जब लीडर की जगह खड़ा हो तो उसकी लीडरशिप नजर आती हो। तो ये चीजें होती हैं, तो हर एक के अंदर सलाहियत नहीं होती। कोई अच्छी राइटिंग नहीं कर सकता, भाई हमको खुशखती करने दो, और भाई खुशखती कागज खराब करेगा भैया, कलम खराब करेगा, स्याही धागे पीछे कर देगा, नहीं नहीं आती खुशखती। ये मैं आपको चंद चंद एग्जाम्पल दी है। क्या हर कोई दीवार पर रंग कर सकता है? नहीं कर सकता।
क्या करता है सर? ब्रश पकड़ के बस दीवार पर
करे भाई, ब्रश पकड़ के करता रहे, जो करना डब्बे खाली करेगा और क्या करेगा, कभी क्या होगा कहीं क्या होगा कहीं क्या होगा। हुजूर रंग मिलाना हर एक का काम नहीं है, लिकुली फनी रिजाल, हर फन के मर्द होते हैं, तो ये हर एक को इसमें गौर करना चाहिए। यानी सुपरवाइजर ठेकेदार बैठ कर बिल्डिंग खड़ी कर देता है, पता है आपको, ठेकेदार बिल्डिंग खड़ी कर देता है बैठ कर देख देख कर, उसको बोल दो दीवार खड़ी कर नहीं आता, वो दीवार वो मजदूर खड़ी करता, देखा वो डोरी के अंदर एक छोटा सा वो
लाठू सा होता है,
हाँ होता है, वो लटक रहा होता है, वो उससे अपनी दीवार चेक कर रहा होता है यार। आप अच्छा मजदूर इतने पूरी को 50 दीवारें मजदूर ने खड़ी की है, मजदूर को बोला तू ठेकेदार बन जा, मजदूर को ठेकेदार ही बनना नहीं आता, वो नहीं आता। ये मैंने आपको इसलिए अर्ज किया है कि हर चीज में ये नहीं लिया जाता कि मैं ये कर सकता हूँ, बात चीज हम नहीं कर सकते। हाँ अगर वो कर सकता है और वो चाहता है कि मैं करूं, और आपको भी लगता है कि यार मौका देने में हरज नहीं है, या कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है आपका माजी में, और उसका पैशन इस तरफ जा रहा है, तो पैशन के मुताबिक अगर वो प्रोफेशन यूज कर लेता है तो आपको मोटिवेट करना चाहिए, आपको इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, आपको उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए, बल्कि आपको ये कहना चाहिए कि मैं हूँ, आप आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं खड़ा हूँ आपके साथ, हो सकता है ये आपको कुछ कारनामा अंजाम देकर बता भी दे।
वाह जी वाह,
मैं मिक्स बात कर दूं।
नहीं बहुत अच्छी बात आपने कही है, वो पंजाबी में कहते हैं जी 100 कामत एक आरी, यानी 100 लोग काम करने वाले और एक उनमें जो उनको हिम्मत दिला रहा था, शाबाश हाँ ठीक है भाई जाने दो भाई, इस तरह तो इसका भी एक बड़ा वो होता है एक किरदार। लेकिन देखा जाता है ऐसा कि वो बंदा जो उड़ान भर रहा है वो तो यही सोच रहा होता है कि मुझे इसमें जो है वो आगे बढ़ना है और मुझे आगे जाना है। और ये भी देखा गया है कि बाद का लोग तो समझ रहे होते हैं ये कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जब वो कुछ करने पर आता है तो बहुत बड़ा जो है वो अचीवमेंट भी कर जाता है। तो इसमें भी तो चाहिए कि जो डीमोरलाइज कर रहा है उसको भी तो चाहिए ना, वो थोड़ा देखे
मतलब कि मैं कहता हूं भाई जनरल जिंदगी में रहे। मैं ये नहीं कहता कि कोई अहम काम या अहम बात या कोई अहम मंथ वो टारगेट अचीव करने की सोच नहीं होनी चाहिए, मगर ये देखिए कि दुनिया में अरबों लोग हैं, इसमें कम ही लोग होते हैं जो बहुत कारहाई नुमाया अंजाम दे जाते हैं। इसमें ये होता है कि अल्लाह ताला जिसको जिस काम के लिए मुंतखब फरमा ले, और अल्लाह ही है जो बंदे को अच्छे कामों की तौफीक अता फरमाता है।
सुभान अल्लाह, ठीक है
ये मैं अर्ज करूंगा।
मरहबा जी, कॉल शामिल करता है।
प्यारे प्यारे निजवार शुरा नतारिस हैं, क्या खूबसूरत खुद हैं और क्या खूबसूरत बातें करते हैं। प्यारे प्यारे मेरे मेरे प्यारे 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 पीर अलियास कानी साहब के ये जो नगीले है ना भाई, ये दिल करता है कि इनको देखते रहे सुनते रहे। अल्लाह ताला इनको तरक्की दो, मदनी चैनल को आबाद शाद। मोहम्मद रमजान कादरी बोल रहा हूँ जिला बक्कर।
बहुत बहुत शुक्रिया
माशाल्लाह,
दिल खोलकर हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह खैर।
ऐसा ईद की आमद आमद है, रमजान मुबारक भी जा रहा है, दोनों तरह की कैफियत है। और माह रमजान मुबारक के हवाले से एक जैसे जा रहा है तो इसकी भी बात हम कर ही लेते हैं। तो अमीर अलसुन्नत की एक खास जो है वो कैफियत है हमें नजर ही आती है, और दिन ब दिन अमीर अलसुन्नत की दुआ में जो गिरिया है, आपका जो रोना है, और ये भी मतलब बढ़ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। जबकि एक तादाद ऐसी है कि जिसकी निगाह ये ईद के ऊपर है, फोकस ईद पर है, ईद पे क्या पहनेंगे, किधर जाएंगे, क्या माहौल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुख्तलिफ किस्म की रूमर्स भी हैं, बातें भी हैं, गलत फहमियाँ भी हैं, तैयारियां भी करनी है, कोई कपड़ों का सोच रहा है, कोई किस चीज का सोच रहा है, तो आप क्या कहेंगे नाज़रीन?
प्रायोरिटीज है, तरजीहात होती है जिंदगी की, और मिले सुन्नत की जिंदगी की एक अपनी तरजीह है। इस तरह के कई और अल्लाह के नेक बंदे बुजुर्गान दीन है जिनकी अपनी तरजीहात हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये रमजान के जाने के बाद ये जो इतना जो नेकी और सवाब कमाने का जो मौका हाथ से चला जाएगा इसका क्या। ये आप एक काम करें, दुकानें तो खुलती है ना
जी,
किसी मार्केट का ऐसा आदमी जिसने अभी दुकान खोली उसका धंधा शुरू हुआ हो कारोबार, उसको पूछे कि यार इतवार को ईद होनी चाहिए या पीर को होनी चाहिए, वो शायद आपको पीर ही कहेगा, यार एक दिन और बढ़ना चाहिए, मेरी सेल अच्छी हो जाएगी, मेरा माल बिक जाएगा। तो उसके मतलब उसके दिल में जो होगा यार इतवार को ईद आ गई तो वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए सोच रहा है, कोई अपनी नेकी बढ़ाने के लिए सोच रहा है। जाना तो है इस महीने ने, रहना तो नहीं है इस महीने ने, तो जब जाना ही है तो इसको अश्कवार आंखों से ही विदा करना चाहिए कि ये एक मेहमान है, फजल करम वाला है, फजल वाला है,
शफात करेगा,
शफात करेगा
अल्लाह अल्लाह,
और ईमान पर गवाह है,
वाह वाह,
और अजाब कब्र से रोजे बचाते हैं,
अल्लाहु
अकबर, तो कुरान करीम की तिलावत इसमें बढ़ जाती है
जी।
नमाजियों का जौक और शौक और जज्बा देखने के लायक होता है। तो ये सारी चीजें जो कुछ हो रही होती हैं, तो इन सबके चले जाने, कम हो जाने, छूट जाने, इन सबकी चीजें ये कैफियतें होती हैं कि फिर वो अल्लाह के नेक बंदों को गम दिला रही होती हैं, अफसोस करवा रही होती हैं कि काश के ये, क्यों रोक नहीं सकते तो, लेकिन जाने का गम तो होगा ना, तो ये होता है। तो अब अपनी अपनी तरजीहात होती हैं, तो अब कईयों का मिजाज ही नहीं है, जहन ही नहीं होता उनका, जहन आदमी कपड़े जूते सैंडल और अपनी वो मैचिंगों में लगा हुआ होता होगा। तो अब ये हमारा कल्चर बन चुका है, मुझे नहीं पता कि सदियों पहले क्या कल्चर था, कोई मैंने पैसा पढ़ा नहीं है। ये इतना है कि बुजुर्गों को गमे रमजान तो मैंने पढ़ा है कि बुजुर्गों का गमे रमजान होता था, और कई ऐसे बुजुर्ग गुजरे जो गमे रमजान में रोया करते थे और गमे रमजान पर बात करते थे, रमजान
जो है ना इस मौजू पर बयानात जो है मौजूद है बुजुर्गों की किताबों में।
और तो लेकिन ये जो आज जब से मैंने होश संभाला है, मैंने तो कम अज कम ये ट्रेंड देखा है कि ईद की तैयारी, ईद की तैयारी, ईद की तैयारी। मुझे पर्सनली मदनी माहौल में यानी दावत इस्लामी में आने के बाद पता चला कि रमजान के जाने का भी कोई गम होता है और उस पर भी बंदा रोता है। और मैं भी जिंदगी में जब पहली बार माह रमजान की रुख्सत पर अगर मैं रोया हूँ तो दावत इस्लामी के इतिकाफ में 1991 में ही, इससे पहले मुझे याद नहीं पड़ता कि माह रमजान के जाने पर कभी हमने गम किया हो, कभी हमें अफसोस भी हुआ हो। सीधी मैं माहौल में नहीं था तो मुझे वो घड़ियां याद है, वक्त याद है कि वो क्या था। लेकिन जिनके घरों में माहौल है जो खुद दावत इस्लामी में है, या वो इस्लामी बहनें जो दावत इस्लामी में है, बच्चे और बच्चियां जो थोड़ा समझदार हैं, उनको तो पता है ना माह रमजान क्या है, अंदाजा होना चाहिए। तो उनके अंदर एक अफसोस और गम की कैफियत होनी चाहिए। और ईद अगरचे खुशियों के, ईद को खुशी करना, खुशी का इजहार करना ये सुन्नत है, सुन्नत मुस्तहब्बा है, ठीक है, लेकिन ये कि अपनी धुन एक ही बना लेना, कपड़े ये वो तो फला तो फला तो ये, और वैसे इस हाल में ये बेचारे घर में वैसे ही परेशानियां होंगी और इतने आमदनियों के मसाइल होंगे, रोजगार के मसाइल होंगे, पैसे भी इतने खुलकर हों ये भी जरूरी नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हजारों या लाखों ऐसे होंगे जो पिछले साल के मुकाबले इस साल इनकी ईद का जो मामला होगा ये पिछले साल से तैयारी के मुकाबले में हल्का होगा, पोजिशन ऐसी है। तो अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह आसानी फरमाए और हमें गमे रमजान नसीब भी हो, और जो ईद एक मुसर्रत का खुशी का दिन है उसको उसी तरह गुजारे जैसा कि शरीयत मुतहरा ने इरशाद फरमाया। और हम मतलब कि ईद ये भी अल्लाह ताला की तरफ से उसके बंदों के लिए एक इनाम है ईद, यानी उस दिन कमाल देखिए कि चांद नजर आने से पहले जो माह रमजान था रोजा फर्ज ना रखना गुना, और चांद नजर आने के बाद शवाल मुकर्रम की पहली तारीख ईद रोजा रखना गुना, यानी रोजा रखना नाजायज, मना कर दिया गया कि रोजा नहीं रखना, ये रोजा हराम है शरीयत मुतारा में, इसको मना कर दिया गया रोजा नहीं रखोगे, ये अल्लाह ताला की हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है।
बल्कि हदीस में फरमाया गया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से दावत के दिन है, ज़ियाफत के दिन है।
तो क्या इसमें बंदा मतलब कि जब रब ने अपने बंदों के लिए एक दावत और एक ज़ियाफत क्या एक दिन अता फरमाया, उस वक्त अपने रब को राजी करने वाला अंदाज नहीं होना चाहिए।
हाय सुभान अल्लाह,
अब मेरी दावत पर आओ तो आपका अंदाज क्या होगा, हम तो रब की दावत पर गोया के ईद मना रहे ना, यूं हुआ
अल्लाह अल्लाह,
तो हमारा अंदाज क्या होना चाहिए, रब की नाफरमानी या रब की फरमा बरदारी। ईद उसने दी तो खुशी मना रहे, किसी दुनियावी तौर पर हमने ईद नहीं मनाई, यानी दुनियावी ऐलान पर हमने ईद नहीं मनाई, ईद तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक मना रहे कि आज ईद है और हमें ईद मनानी है। تو عید تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق منانی چاہیے نا.
سبحان اللہ,
عید دی انہوں نے, یہ بہت سمپل سی بات ہے.
ماشاءاللہ, امیر السنت کا بھی جمعۃ الوداع کا جو مدنی پھول آیا ہے وہ یہ ہے کہ عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے, عید تو اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا.
اللہ اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے.
آمین آمین آمین. اچھا, عید پہ مدنی چینل کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ آپ کا جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں, کیا دے رہے ہیں ناظرین کو, کس طرح سے وقت گزرے گا.
انشاءاللہ ہم 8 بجے ہمارا نشریات, جو ہماری خصوصی نشریات ہے, 6:30 بجے تو
بہار عید,
وہ عید کی نماز ہے
جی,
اور عید کی نماز کے بعد جیسے خطبہ ہوتا ہے, دعا ہوتی ہے, ماشاءاللہ ایک سما ہوتا ہے, اس کے بعد کچھ نشریات سلسلہ وہ بھی لائیو دکھائیں گے ہم دعا وغیرہ
جی.
پھر تو 8 بجے ہم انشاءاللہ براہ راست آپ بھی جلوہ فرماؤں گے انشاءاللہ,
یہ حاضر ہوں گے.
تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے ساتھ مختلف مہمانوں کو, یعنی اسلامی بھائیوں کو ہم نے بلایا ہوا ہے وقتاً فوقتاً. جیسے آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں نا, ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے اسلامی بھائی آئیں گے اپنے بچوں کے ساتھ, مفتی حسان صاحب تشریف لائیں گے, تو ہم مفتی علی اصغر صاحب تشریف لائیں گے, اور حاجی امین صاحب تشریف لائیں گے, اور اراکین شورا ہے وہ بھی ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. ہم نے باری باری سب کو دعوت دی ہے, 15-15, 20-20 منٹ, آدھا آدھا گھنٹہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے, کچھ ہم ان سے بات چیت کریں گے, کچھ آلے وال لیں گے, نیکی کی باتیں کریں گے, اچھی اچھی گفتگو کریں گے, ان کے بچوں کے ساتھ کچھ سوال جواب کریں گے, کچھ ایک آدھ مقابلہ بھی کر لیں گے, کچھ عیدی بھی دے دیں گے
ماشاءاللہ.
تو پھر وہ تشریف لے جائیں گے, پھر ہمارے دوسرے آئیں گے, نعت خان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, آپ کی کولیں ہوں گی. تو یہ تقریباً 8 سے لے کر 12:30 بجے تک کا سلسلہ انشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی ان کے بھی بچوں کے ساتھ ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہوئی ہے کہ وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں جلوہ فرما ہوں. حاجی شاہد انشاءاللہ صدر آباد سے آئیں گے, اور بھی ہمارے اسلام بھائی کو ہم فیصلہ آباد اسٹوڈیو سے براہ راست ان کے بچوں کے ساتھ لیں گے تاکہ ہم ان سے اور ان کے بچوں سے بات چیت کر سکیں. تو انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے کہ ان سب کے ساتھ 15-15, 20-20 منٹ گزاریں گے, پھر آپ کی کالیں لیتے رہیں گے, نعتیں سنتے رہیں گے. تو یہ ایک سلسلہ ہم لے کر عید کا چلیں, کچھ کچھ کھانا پینا بھی چلتا رہے گا.
واہ واہ, مرینہ مرینہ. میں یہاں ایک خاص بات ناظرین کو بتاتا چلوں جو انتہائی اہم بات ہے
بات آپ کی
یاد کی, وہ یہ ہے مدنی چلے کے ناظرین کہ مہمان کی تبدیلی کے ساتھ موضوع بھی تبدیل ہوگا. اگر 7 مہمان تشریف لا رہے ہیں تو 7 مہمانوں کے 7 الگ الگ جو ہے وہ انشاءاللہ یہ موضوعات بھی ہوں گے, اور اس میں جس طرح ایک اچھے اور خوشگوار اور ایک خوشیوں بھرے ماحول میں وقت گزر رہا ہوگا, ویسے ہی انشاءاللہ ایک ورسٹیلٹی کے ساتھ, ایک ورائٹی کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ علم دین, یہ بھی چیزیں انشاءاللہ اخلاق و
آدابات بھی کیے جائیں گے, صحیح جواب دینے پر انشاءاللہ انہیں انعام اور عیدی بھی ملے گی.
واہ واہ, سبحان اللہ. اور یہ تبرکات بھی جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے تحفے میں.
میں نے نیت کی ہے کہ امیل سنت کی استعمال کی بھی کچھ چیزیں لے کر آؤں.
اللہ اللہ اللہ,
اور
اللہ جو آپ لے کر آتے ہیں وہ تو آپ ہی لے کر آتے ہیں جی, سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی آگے مدنی چلے کے ناظرین, وقت جو ہے اختتام پذیر ہے, تو میں ایک لگے ہاتھوں آخری آخری سوال جو ہے وہ یہ عرض کرتا چلوں کہ
لگے ہاتھ تو کیوں یار, آپ ویسے ہی لکڑ لیا کرو یار
جی,
آپ کو بہانہ بنانے کی کیا,
بڑی بڑی
گھر کے آدمی ہو یار,
میرے منہ سے نکل گیا, اللہ خیر فرمائے. بات یہ ہے کہ گھر کے افراد, گھر کی اسلامی بہنیں, یہ اس عید کے موقع پر جو آ رہی ہے, اپنے گھر کے سربراہ کو ایک کس طریقے سے بے فکر کر سکتی ہیں یا اسے ایک ہمت دلا سکتی ہیں, میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں. کیونکہ ایسا جو سب سے زیادہ ٹینشن ہوتا ہے وہ جو گھر کا سربراہ جو ارننگ کر رہا ہے نا جی, جو کما رہا ہے, اس پر ایک ٹینشن اس پر سب سے زیادہ ہوتا ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے, اللہ اکبر, مالک کا کتنا یہ مہربانی ہے اور احسان ہے کہ اس کو اپنی کم اور جو اس کے زیر دست ہیں, جو اس کے ماں تحت ہیں, اس کے گھر میں اس کی بچوں کی ماں ہے, بچے ہیں, بھائی ہیں, مطلب چھوٹے بھائی ہیں, والدین ہیں, ان کا جو ہے وہ زیادہ خیال ہوتا ہے, اپنا بھی شاید اتنا ہوتا نہیں ہے. تو یہ جو گھر کے افراد ہیں, یہ اپنے کمانے والے کو اس ان ایام میں اور آگے جو عید بھی آ رہی ہے, کس طریقے سے اس کو فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں, کوئی سہولت فراہم کر سکتے ہیں, اس پر بھی کچھ ہو جائے.
زیادہ خواہش اور ڈیمانڈ کو ختم کر دیں, اور پوچھیں بھی شاید نہ کہ آپ کر سکیں گے, وہ بوجھ تلے آ جائے گا. کیونکہ वो सिचुएशन इनको पता होनी चाहिए कि घर की, बाजों की सिचुएशन नॉर्मल है
सही,
लेकिन अक्सरियत की सिचुएशन जो है ना वो अंडर द लाइन है, बिलो द लाइन है। उनको चाहिए कि वो कॉम्प्रोमाइज करें, ख्वाहिशें ना करें, फरमाइशें ना करें, और जो एक दस्तियाब है ना उस पर गुजारा कर लें। सुना यह है कि बाहर चीजें महंगी हो गई हैं, मैंने सुना है बाहर चीजें महंगी हो गई हैं। डेफिनेट एक इकोनॉमिक्स जो मैंने पढ़ी है, एक उसूल आपने भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स का, जब सप्लाई कम और डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस बढ़ जाते हैं, ये एक इकोनॉमिक्स का एक उसूल है। वो यही रहा होगा कि इस वक्त सप्लाई इतनी ज्यादा शायद नहीं होगी जितनी इस वक्त डिमांड बढ़ गई होगी, क्योंकि सुना यही है कि मार्केटों में ये, और बस अल्लाह आपकी मेरी सेहत की भी हिफाजत करे और जान माल इज्जत आबरू की भी हिफाजत फरमाए। तो यूं मतलब कि अपने घर के बड़ों को माली टेंशन में मुब्तला नहीं करना चाहिए। अगर पिछले साल इन्होंने आपको फॉर एग्जांपल 500 रुपए ही दी दी थी, अगर इस बार 200 रुपया दें तो मुस्कुरा कर ले लीजिएगा, ना देना तो दुआएं जरूर दीजिएगा। आपने पिछले दफा 500 दी थी सर, 500 तो नहीं दे सकता होगा इसलिए नहीं दी होगी। शर्मिंदा मत कीजिएगा, कोई भी हो उसको शर्मिंदा ना करें। आपके घर में बच्चों को भी समझा दें कि अगर कोई इस बार कम ईदी दे तो भी ले लें, ना दे तो भी, क्योंकि ईदी तो एक खुशी की बात है, कोई हमारा हक थोड़ी था कि उसने 500 रुपये तो मेरा हक था। महंगाई बढ़ गई है, इस बार सोना भी महंगा हो गया है, तो आपको 500 के 1000 करके देने चाहिए थे। तो वक्त नहीं है ये, मैं आपको सही बता संजीदगी के साथ, ये वक्त नहीं है। हम कह के तो निकल जाएंगे लेकिन वक्त नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन ने मुआशी तौर पर अच्छों अच्छों के कमरे तोड़ कर रख दिए हैं, और अच्छों अच्छों के जहन जो है ना वो अब शायद काम नहीं करते कि होगा क्या, बेरोजगारियां हो गई होंगी, बहुत कुछ यानी ऐसा कई ऐसे शायद घर होंगे जिनमें ईद की वो खुशी शायद ना हो, क्योंकि उसका रोजगार चला गया होगा, उसकी वो चीज हुई नहीं होगी। तो आपको तो ये कम होगा कि मेरे कपड़े सही नहीं है या नए नहीं है या जूते नए नहीं है या फला नहीं है, उसके हाल पर गौर करो जिसका रोजगार ही चला गया, जिसकी दुकान ही बंद हो गई, जिसका टीआई बंद हो गया है, जिसको फारिग कर दिया गया है, यानी बाद हैवी सैलरी वाले लोगों को जॉब से फारिग किया गया है। मुझे पता हैवी सैलरी वाले लोग जॉब से फारिग कर दिया, अगरचे उनके पास सर प्लस हो सकता हो लेकिन उनको टेंशन ठीक ठाक होगा, क्योंकि जो हाई सैलरी पर्सन लोग होते हैं ना इनकी पोस्टें कम होती हैं इदारों के अंदर, इनकी इनकी सीटें कम होती हैं। मिसाल को किसी कंपनी का सीईओ है, ठीक है, सीईओ एक पोस्ट है, अगर सीईओ अगर फारिग हो जाए तो लेबर नहीं है कि 500-500 1000-1000 सीईओ लेबर लग जाते, सीईओ किसी कंपनी का एक ही होता है। अब वो सीईओ से कम में जो भी क्या करेगा, अब ये जहां भी अप्लाई करेगा वहां तो सीईओ बैठा हुआ है, तो सीईओ को खुद फारिग करेगा। इस तरह की बात ऐसी पोस्टें होती हैं जो 2 या 3 या 4 या 5 बहुत ज्यादा 10 एग्जिस्ट करती हैं, और जब वो लोग फारिग हो जाते हैं ना उनको दोबारा जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं वैसे तो उन लोगों से अर्ज करूं, अगर हलाल और जायज और तैयब रोजगार है ना तो इसमें एक्शन और नखरों से बचने की कोशिश कीजिएगा, कि अगर ये जॉब से बंदा निकल जाता है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और ये मैंने जनरल डिस्कशन आपसे कर ली है, और अगर घर के बड़ों में कुछ वसत है कर सकते हैं तो कीजिए, ताकि ये अय्याम जो है ये भी तो राहत और फरत और खुशियों के साथ बीत जाए। बच्चे बच्चियों का दिल थोड़ा होता है, तो अगर अल्लाह ने वसत दी है तो खुश दिली के साथ कर लीजिएगा, अल्लाह की रजा वाले कामों की मैं बात कर रहा हूँ।
माशाल्लाह देखते रहिए और अच्छे अमाल अच्छे अखलाक अच्छे किरदार को अपनाते रहें। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।